رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 113 آیت نمبر 21 سے 30 سورۃ یونس. لیسن نمبر 113 آیت نمبر 21-30 سورۃ یونس. آج کے سبق کا جو مین تھیم ہے زندگی ایک ڈھلتا سایہ. بہت ہی خوبصورت تمثیل ہے ہمارے آج کے سبق میں کہ جس نے دنیا میں جو تھوڑی بہت بھی انسان کی کشش ہوتی ہے اس کو بھی پیچھے کر دیا. بہت ہی پیاری مثال میں بارش کے پانی کو وحی الہی سے اس میں جوڑا گیا اور دنیا کے مال کو بارش کے پانی سے ہم اس سبق کی روشنی میں ایک خوبصورت تقابل کریں گے. دوسری چیز جو اس سبق کے اندر ہمیں دکھے گی وہ کیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں صرف چکھنے کے لیے, آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے. پھر اگلی چیز جو آج کے سبق میں آئے گی کہ سرکشی نہیں چھوڑتے تو نہ چھوڑو, اس کا وبال تمہارے اپنے اوپر پڑے گا. پھر شرک کی کچھ قسموں کا تذکرہ ہے اور ایک اور سوال کا جواب ہمیں اس سبق سے ملے گا اور وہ کیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کس چیز کو پا کر جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے. اور آخری چیز جہنمیوں کا کیا, جہنم میں کیا روپ ہوگا. آئیے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے فہم کو کھول دے, دل دماغ کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم ان آیات کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 21. پچھلی آیات میں ہم نے اچھی طرح سے وہ ماحول سمجھ لیا جس میں یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں. نت نئے قسم کے مطالبے, نبی کے کردار پہ باتیں اور وحی کو جادو کہنا اور نہ ماننے کے 100 بہانے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے تو مسلمان تھے لیکن وقت اور ماحول نے ان کو کافر بنا دیا تھا, ان سب کو اب تھوڑا سا مزید بیدار کرنے کے لیے کہتے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ. یہاں رک جائیے. اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو کہ ان پر آ گئی تھی. یہاں کوما لگا کے اب رویہ دیکھیے, یعنی جب کسی کو کسی تکلیف میں ڈالنے کے بعد ہم رحمت دے دیتے ہیں, اس تکلیف سے نکال دیتے ہیں مشکل سے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا, تو فوراً ہی وہ ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنے لگتے ہیں. کتنے ناشکرے ہیں لوگ. ایسے لوگوں کو کہہ دو, کیا کہہ دو؟ قل اللہ اسرع مقرا, آپ کہیے کہ اللہ اپنی تدبیروں میں کہیں زیادہ تیز ہے. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون, یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو سازشیں بھی تم کر رہے ہو. بہت ہی شعور کو بیدار کرنے والی آیت ہے. اس ایک آیت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. کرنا تو کیا چاہیے تھا کہ نبی کے وجود کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سمجھتے ہوئے آپ کی قدر کرتے اور اس دعوت میں آپ کے شریک رہتے, لیکن مکہ والوں نے اس طرح سے اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ کیا کہ جس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی. یہ بات آپ سب میں بہت دفعہ سن بھی چکے ہیں اور کر چکے ہیں. جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے, اور آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایمان والے جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب ان پہ رکے ہوئے تھے, جب وہ سب مکہ کو چھوڑ کے چلے گئے تو مکہ والوں پر ایک زبردست قسم کا قحط پڑا تھا. اتنا زبردست قحط تھا کہ اپنے جانوروں کی کھالیں تک کھا گئے, اور جب اوپر دیکھتے تھے آسمان کی طرف تو ان کو نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے اندھیرا دکھتا تھا, دھواں دکھتا تھا. سورہ دوحان میں اس کا کچھ نہ کچھ تذکرہ میں ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ سبحانہ تعالی نے اگر شان نزول کے اعتبار سے دیکھے تو وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ, اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو, تو لوگوں سے یہاں مراد پھر مکہ والے. لیکن اس کے بعد ہر وہ انسان جو اللہ کی رحمت کو, اللہ کی نعمت کو اور خاص طور پہ اللہ کے دین کی نعمت کو فار گرانٹیڈ لے لے, उसकी वो कदर ना करे जो करनी है, या फिर उसके लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं उससे भागने लगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई बात नहीं, कितने दिन खैर मनाओगे? नबी का वजूद तुम्हारे लिए अजाबों से बचने की एक दलील थी। और हकीकत में हदीस से भी ये बात हमें मिल जाती है, रिवायात में इस तरह की बातें आती हैं कि जिसने अल्लाह के किसी वली से दुश्मनी की, अल्लाह ताला उससे खुद दुश्मनी करता। पीछे भी ये मज़मून गुजरा था। तो फरमाया कि हमने तुम्हें चखाई थी, यहाँ लफ्ज़ ज़रा अज़क ना को चखिए, ज़ाल वाक़ाफ़ ज़ौक इसी से है, चखना। असल मानी होता है मुंह से चखना, लेकिन मजाजन यानी एक साइड के मीनिंग से देखें तो यहाँ मुराद रहमत या नेमत या अजाब को चखने के लिए ये लफ्ज़ आता है। यहाँ टेस्ट करना नहीं है कि आपने मुंह में एक चीज़ डाली और उसको देखा कि ये खट्टी है कि मीठी है कि कड़वी है, बल्कि वो चीज़ किस तरह से होती है कि जिसको आप इस तरह से ले लेते हैं कि जो वाकई हकीकत में इंसान महसूस कर सकता है। तो आप अज़कना को यहाँ कह सकते हैं महसूस करवाना। अगर हम यहाँ आम तौर पे भी देखें इस आयत को, तो एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता कि इस दुनिया में जो कुछ भी हमें मिला ये सिर्फ चखने को मिला है। ये माल, ये औलाद, ये दुनिया, ये कहानियाँ, जिसका आज के सबक में हम थीम ले रहे हैं और आगे जाके इस पर इंशाल्लाह बात भी होगी, हकीकत में ये हमें यहाँ दुनिया में पूरा नहीं मिला। मैंने एक जगह ये जुमले बोले तो बाद में एक सिस्टर आई और मेरे से उन्होंने मज़ीद भी वजाहत चाही। मैंने उन्हें कहा कि आपको पता कि ये दुनिया में जो आपके रिश्ते हैं ये असली रिश्ते नहीं हैं, या आपके जो बच्चे हैं ये आपके अपने बच्चे नहीं हैं, असली बच्चे नहीं हैं, और सेम थिंग बाकी चीज़ें। तो बाद में कहने लगी कि ये आपने कैसे कहा ना, तो मैंने उनको बताया कि इसलिए कि असल औलादें वहाँ मिलेंगी, यही नकली औलादें वहाँ असली बन जाएंगी इंशाल्लाह, अगर हम और वो अल्लाह की रज़ा के साथ दुनिया में जिए और मर गए। और सेम थिंग माँ बाप भाई बहनों में भी है, इसी तरह शौहर बीवी अल्लाह ताला की नेमत है। दुनिया में जो मिली है ना ये ट्रायल वर्जन है, इसीलिए आप बाज़ दफ़ा मिस मैच शादियाँ देखते हैं, बीवी का मिजाज कुछ है तो शौहर का कुछ है, समझ ही नहीं आती। तो याद रखिए कि ये एक ट्रायल वर्जन है, असल शौहर बीवी या असल रिश्ते वहाँ जुड़ेंगे। यही बात यहाँ कह दी कि हम तो दुनिया भी तुम्हें सिर्फ चखाते हैं, लेकिन तुम जब उस नेमत को अपना हक समझ लेते हो तो फिर याद रखो कि तुम अल्लाह के साथ मुकाबले करते हो। जब ये अजाब आया इन पे तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास आए, इनको ये तो दिल की गहराइयों से पता था कि ये सच्चे नबी हैं, हम इनका साथ दें ना दें ये पैगाम फैल जाएगा, ये उनको भी यकीन था। तभी तो याद करें हिजरत के मौके पे उन्होंने जो बात सोची थी कि हम इनको निकाल दें यहाँ से बाहर, सूरह अनफाल की आयतों में पढ़ चुके हैं आप। तो नजदी शेख ने क्या कहा था, कहने का अल्लाह के बंदो तुम्हारे पास है, शुक्र करो, चलो ढका छुपा पैगाम बाहर जा रहा है, तुम इसको निकालोगे, तुम्हें नहीं पता इसकी बातों में कितना असर है, ये जहाँ जाएगा अपने लिए लोगों को जमा कर लेगा। और ये हकीकत है, ना मानने वालों को भी कुरान की सच्चाई का पता होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोग फिर क्या करते, नबी सल्लम के पास आए, नबी सल्लम को रिश्तेदारियों के वास्ते दिए, कराबतदारियों के ताल्लुक बताए कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस कहत को दूर कर दे। बिल्कुल वही अंदाज जैसे कौम मूसा पे अजाब आते थे, पीछे सूरत अलराफ में हम पढ़ चुके हैं, सात मुख्तलिफ अजाब आए थे, और जब कोई अजाब आता तो आके क्या कहते, या मूसा उदलना रब्बा का, ए मूसा अपने रब से कहे कि हमारे लिए इस अजाब को रोक दे। और जब मूसा की दुआ से वो अजाब टल जाता तो उस वक़्त वो दोबारा वही काम करने लग जाते। तो क्या पता चला कि नेमतों में इंसान को अपना रवैया नोट करना चाहिए। देखिए इंसान की फितरत में एक चीज़ है, बस उसको फितरत से निकालना ही जिहाद है, इसी को जिहाद बिन नफ्स कह लीजिए। और वो क्या है कि जब उस पर अच्छे दिन आते हैं तो उसको लगता है कि ये हमेशा रहेंगे। दूसरी उसकी फीलिंग अच्छे दिनों में क्या होती है, आई डिज़र्व दिस, ये मेरा हक है। तीसरी चीज़ उसको अच्छे दिनों में जो भूल लाहक हो जाती है वो क्या होती है कि चूंकि अल्लाह मुझसे खुश है तभी तो उसने मुझे ये नेमत दी। इस तरह के कुछ और रवैये जब उसके अंदर आते हैं ना तो इसके नतीजे में वो बंदा फिर चौड़ा होने लगता है, अपनी ज़ुबान में अगर हम कहें फिर वो मस्तियाँ करने लगता है। वो कहता है देखो अल्लाह ने मुझे दुनिया में दिया है आगे भी देगा, देखो वो मुझसे खुश है ना, इसलिए ये एक फितरी सी बात है। आप नेकी का काम शुरू करें और आपको कोई अच्छे ख्वाब आने शुरू हो जाए, आपके मियाँ की प्रमोशन लग जाए, आपकी बच्ची का रिश्ता हो जाए, सो ऑन, तो हम कहते हैं देखा नेकी की है ना तो ये होगा। और खुदा ना खास्ता नेकी करें اور رہی بھی چیز بھی چلی جائے، کچھ حادثہ ہی ہو جائے، تو کہتے ہیں بس اللہ دیکھا، ہم تو پہلے ہی نہیں کرنا چاہتے تھے یہ نیکی، جب سے نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں کاروباری ٹھپ ہو گئے، اور جاؤ مسجدوں میں نمازیں پڑھنے. تو یاد رکھیں، یہ بڑا بڑا کر کے لکھ لیں، دنیا میں کسی نعمت کا ملنا، اس کا ہماری نیکی اور ہماری بدی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے نا، یہ ٹرائل کے لیے مل رہا ہے. پچھلے سبق میں آپ کو سنایا تھا نا کہ یہ دنیا تالوت کی نہر ہے، یہاں جو کچھ ملا ہے وہ صرف اس طرح سے کہ تم اس کا استعمال کیا کرتے ہو. آخرت میں جو کچھ ملنا ہے وہ ملے گا اس سوچ کے ساتھ انعام پہ. تو انعام اور جزا میں کسی چیز کا ملنا اور آزمائش میں ملنا، اس کا بہت بڑا فرق ہے. اصل چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ کیا ہے کہ نعمتیں پا کر میرا رویہ کیا ہو جاتا ہے، کیا میں ان نعمتوں کو پا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتی ہوں. کیونکہ یہاں آپ دیکھیں صاف ہے نا کہ ہماری آیتوں کے ساتھ مکر کرنے لگتا ہے. یہاں لفظ جو ہے نا کہ جب ہم اس کو رحمت کے بعد درر دیتے ہیں، تو درر یہاں رحمت کے متضاد کے طور پہ آیا ہے. کیسے؟ صحت کے بعد بیماری، بارش کے بعد قحط، دولت کے بعد غربت، اشارہ اسی قحط کی طرف ہے. مستتھم جو اس کو لگا تھا، میم سین سین، مس چھونا کسی چیز کا، تو کیا کرتا ہے؟ مکر کرتا ہے. مکر کہتے ہیں کسی کو ہیلے بہانے سے کسی کام سے روک دینا. یہاں مکر سے مراد مشرکین مکہ کا مکر کیا تھا؟ نمبر ایک شرک جو انہوں نے کیا کعبے میں بیٹھنے کے باوجود. دوسری بات، نبی کی تکذیب کی. اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے مکر کرنے لگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل اللہ اسرع مکرا، اللہ تو سب سے زیادہ تیز ہے تدبیر میں. یہ جو لفظ ہے نا اسرع، اسرع کا لفظ جو ہے یہ سین را عین، انگلش میں اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ ہوتا ہے سوئفٹ، بہت جلدی کرنے لگا. اسرع سپرلیٹیو ڈگری ہے، سرعت کا لفظ بھی اردو میں بولتے ہیں. یعنی اللہ کی تدبیر تو سب سے زیادہ. یہاں لفظ اللہ کے لیے مکر آیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات ہے مکر اردو اور پنجابی والا مکر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مکر یہاں کیوں آیا؟ اس کو کہتے ہیں باب مشاکلہ، انگلش میں آپ اس کو کہتے ہیں ٹیٹ فار ٹیٹ، اردو میں آپ اس کو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. ان کے مکر کی بات آئی نا تو اللہ نے کہا میں بھی مکر کرتا ہوں، حالانکہ اللہ مکر سے آزاد ہے. بالکل ایسے ہی جیسے وہ کہا کہ یحادون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں مکر سے مراد اللہ کی وہ آہستہ آہستہ کی پکڑ ہے جس میں اللہ لوگوں کو ڈال دیتا ہے جب وہ نعمتوں کو پانے کے بعد اپنے رویوں کو بدل دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ جس کی دنیا فراخ کر دے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے تو وہ فریب خورد ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کو غربت کے بعد دولت ملے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈھیل ہے، امحال ہے، مہلت ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ پھر دن ٹھیک ہو گئے جی، حالات پھر ٹھیک ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ وہ جو غربت کی وجہ سے پرچھائیاں پڑی ہوئی تھیں اور انسان سوشل لائف سے ایک قسم کا کٹ چکا ہوتا ہے، وہ پھر سر پاؤں اٹھاتا ہے، پھر وہی اسراف، وہی دکھاوے، وہی باتیں، پھر دوسرے بھی ان کو خوب بلانے لگتے ہیں اپنی دعوتوں پارٹیوں میں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ وہی کام کرنے لگ جاتا ہے جو اللہ سمجھانا چاہتا تھا. حقیقت یہ کہ یہ دنیا متضادات کا نمونہ ہے. آج خوشی تو کل غم، خوشی بھی آزمائش تو غم بھی آزمائش ہے. ہر وقت ہم آزمائش کے پرچے پہ ہوتے ہیں، کبھی خوشی کا پرچہ ہوتا ہے، کبھی غم کا پرچہ ہوتا ہے. دونوں میں نمبروں کی بات نہیں ہے، اصل میں رویوں کی بات ہے. یہ جو آپ پر میں اکثر حدیث سنتے ہیں نا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، آج اب الامر المومن، کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، صبر کے بدلے جنت، خوشی ملتی ہے شکر کرتا ہے تو جنت. اصل میں یہ دیکھا جائے تو صبر اور شکر دو رویے ہیں اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھنے کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم فکر کرو. ہم ذرا اپنے آپ کو بھی تو پوچھیں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. آج ہم کیسے آیتوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں؟ آیتوں کے ساتھ مکر، بلیو می، ہم اچھے بھلے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور دلیل قرآن کی لیتے ہیں. جی قرآن میں لکھا ہے اللہ کہتا ہے خوش ہو، اللہ کہتا ہے اپنی نعمتوں کا اظہار کرو، अल्लाह कहता है कि खाना खिलाओ, मैंने अपने कानों से सुना कि भैया तले घर से लोग खाने के लिए बुला रहे हैं, तो किसी ने कहा होगा उनको कि हम नहीं खाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, खाना खवाना बड़े स्वाब का काम है, खाना खाएं। यानी उस वक्त कोई नहीं ये पूछता कि इससे पहले या इसके बाद भी कोई अल्लाह के नबी की हदीस कोई बात है कि नहीं। लेकिन हर बात को हम कुरान से साबित करते हैं। बेपर्दगी, बेहयाई, मिक्सिंग को लोग कहते हैं जी सोशलाइजिंग है। इस्लाम चाहता है मिलो जुलो, इस्लाम कहता है जी खिदमत करो, इस्लाम अच्छे अखलाक की बात करता है। तो जब हम अल्लाह के दीन की यानी कुरान की आयतों के मानी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक करते हैं ना, तो ये है मकरुन फी आयातिना। आज तो सबसे बड़ा गम ही है कि आज की इंसानियत ये नहीं सिर्फ कर रही कि अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करती है, आज वो अल्लाह की आयतों को आयतें मानती ही नहीं है। पहले दौर में लोग गलत काम करते थे, मिसाल ले लीजिए सूद की, तो सूद का नाम लेते हुए रोते भी थे, गम भी करते थे और अल्लाह की पकड़ से माफियां भी मांगते थे। आज लोग कहते हैं आज के दौर में सूद है ही नहीं, इस दौर में है ही नहीं है। तो अल्लाह की आयतों के साथ इस तरह का रवैया अल्लाह को गुस्सा दिलाता है। आपकी मेरी किसी दी हुई निशानी का कोई मजाक उड़ाए, चलिए अपने ऊपर लेते हैं। आयत क्या होती है? निशानियां दो लोग दे देते हैं ना अपनी निशानी, ये मेरी माँ की निशानी है, कभी अंगूठी दे दी, किसी को कोई चादर देता कहता अच्छा इसको मेरी निशानी रखो। तो पहले तो आप यहाँ निशानी कहने की वजह समझिए आयतों को, और वो क्या है कि हर आयत हमें अल्लाह का बता देती है। देखिए आप और मैं इधर पहुँचे, रॉयल पार्क पहुँचे, एबे मैनर रोड पे आए, हम अगर फर्स्ट टाइम आ रहे होते तो हम किस चीज़ को फॉलो करके इधर आ रहे थे? साइन बोर्ड। तो साइंस क्या है? आ जाती ना, जिस तरह किसी रोड पे लगे हुए साइन बोर्ड्स हमें उस घर का रास्ता बताते हैं, कुरान की ये 6,666 आयतें हमें अल्लाह का बता देती हैं। मतलब 666 चार दफा लिख ले, इतनी आयतें हैं कुरान में। कितनी हैरत की बात है उस उम्मत के हाल पे कि जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहती है, चलती है, और उस रास्ते पे 6,666 साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं, टेक हेयर, टर्न हेयर, स्टॉप हेयर, यू टर्न, प्लीज हेयर, प्लीज हेयर, ये डूज एंड डोंट्स एंड सब कुछ यही है ना, डायरेक्शन है ना रोड टू जन्ना की। उसके बावजूद उम्मत भटक गई। आपकी ये नॉर्थ सर्कुलर रोड बाहर लगी हुई है, साइन बोर्ड है ना, वो तो लगे हुए हैं, अब आपकी मर्जी है आप इधर जाते हैं, ईस्ट लंदन जाएं, साउथ लंदन जाएं, रास्ते आप खुद गलत चूज करें तो बाद में आप कहें कि इनका कसूर है, उनका क्या कसूर है। और आपके चूंकि मैं भटक जाती हूँ ना, तो आप इसका इस तरह करें कि इस साइन का रुख पलट दें दूसरी तरफ, फायदा होगा? नहीं फायदा होगा। इसी तरह याद रखिए पिछले सबक में भी हमने पढ़ा है कि लोग खुद नहीं बदलते, कुरान को बदलते हैं। एक शख्स है उसको देर से आने की आदत है, वो हमेशा 9:10 पे आ रहा है, वो कहता है रोज आता हूँ ये घड़ी मेरा मुंह चिड़चिड़ाती है, तुम ऐसा करो घड़ी को 9:10 की बजाय 9 पे कर दो। आप कर देते हैं, चलो खुश हो जाए, इसको गिल्ट से बचा दो, 2-4 दिन पर कोई और आ जाएगा और वो कहेगा कि जी मैं तो 9:15 आता हूँ, घड़ी आप किस तरह इसको 9 पे कर दें, आप उसके लिए भी पीछे कर दें। तो जो बेचारे सही 9 बजे आते हैं उनको कौन सी घड़ी दिखाएगी? स्टैंडर्ड बदल दिया आपने, घड़ी बदल गई तो स्टैंडर्ड बदल गया। इसी तरह जो लोग कुरान को बदल देते हैं ना, हिदायत का सोर्स बदल देते हैं, प्ल्यूट कर देते हैं, फिर वो उस तरफ जाने वालों का रास्ता रोक लेते हैं कि हम किस कुरान को माने। तो वही बात जो पिछले सबक में थी और जिस दौर में आयतें हो रही थी, घर घर ये कहानी थी, इस शख्स ने आके हमारा आराम खराब कर दिया। बाप दादा के साथ रहते थे, जीते थे, मरते थे, खुशियां मनाते थे, इस एक शख्स ने आके हमारे रंग में भंग डाल दिया। तो अल्लाह कहता है कि इनको नबी की कोई दुश्मनी नहीं थी बल्कि इनको अल्लाह की आयतों के साथ कुछ चिढ़ थी, तो फिर इनकी मर्जी की वजह से अब हम इसको तो नहीं बदल सकते, इसको तो फिर चलने दो। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि खुशी हो के गम, हर हाल में हम अल्लाह ताला की मर्जी पे चले। मेरा एक अमल नहीं है किसी आयत पे, मेरे अंदर जुर्रत होनी चाहिए कि देखिए हुक्म ये है, मैं अभी तक अपने आप को इस पे तैयार नहीं कर पाई, और आपका भी फर्ज है कि आंखें बंद करके ना देखें मुझे या किसी अपने और उस्तादों को। बस जब हम अपने से बड़ों को एक मेयार बना लेते हैं, बस चूंकि वो ऐसे हैं तो हम भी ऐसे ही रहेंगे। तो दीन हुज्जत है, शख्सियात हुज्जत नहीं है हमारे लिए। हर दिन अपने आप को एक से आगे, दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरे आना चाहिए। अब आगे उनके एक शिर की तरफ इशारा है, और वो क्या था? कहते थे कि ये सितारों का असर होता है हमारी जिंदगी में, पिछले सबक में भी पढ़ा है, तो उसी के असर को भी यहाँ सितारे कह दिए। जब कभी तकलीफ उनकी दूर होती थी ना, तो कहते थे फलां सितारे के असर से ये दूर हो गई है। अल्लाह ताला कहते हैं ये सितारे हों या बारिश हो हवा, ये सब अल्लाह ताला के हाथों में। कैसे? आय 22 को देखेंगे। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्री वल बहर, वही तो है जो तुम्हें सैर कराता है खुशकी और समंदर में। बर क्या हुआ? बार और कहाँ पढ़ा था ये लफ्ज़ हमने? जंगल को कहते हैं बर। लैसल बिर, आयते बिर में आपको ये बताया था कि बिर का लफ्ज होता है ना बार और रॉ, जंगल को भी कहते हैं हम। छोटी बड़ी चीजों को कहते हैं, खुशकी या जंगल जिसमें छोटे पौधे भी होते हैं, घास भी होती है, बड़े बड़े दरख्त भी होते हैं, झाड़ियां भी होती हैं, लेकिन यहाँ इससे मुराद खुशकी है। वल बहरी और समंदर, यानी वही तो है जो तुम्हें सैरें कराता है खुशकी में भी और समंदरों में। ना तुम इस जमीन पे अपनी मर्जी से चलते हो और ना समंदर के सीनों को चीरते हो, दोनों में अल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह ने किस तरह कवानीने तबई के तहत मुख्तलिफ चीज़ों को हमारे लिए मुसख़र कर दिया। फिर होता के हत इज़ा कुन तुम फिल फुल्की, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में होते हो, इमेजिन करें। वह जरई न बिहिम बिरी हिंद तय्यिबह, और वो चल रही होती हैं इन्हीं यानी इन सवारों को लेकर खुशगवार यानी मवाफिक हवा के साथ। व फरिहू बिहा, और वो बहुत खुश होते हैं। इमेजिन करिए कोई पिकनिक पे गया हुआ है, बोटिंग हो रही है, सब मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, हवाएं चल रही हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई खुश कपियाँ। हत्ता कि फिर एकदम क्या होता है, जात खरी हुन आसिफुन, के अचानक तेज हवा का झक्कड़ चल पड़ता है। वजा हुमुल मौज मिन कुल्ली मकान, और हर तरफ से मौजें इनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। वजन्नु अन्नहुम अहीत बिहिम, और वो गुमान करने लगते हैं कि वो इन लहरों में घेर लिए गए। सराउंडेड, हर तरफ से पहाड़ों जैसी लहरें उनकी तरफ बढ़ रही हैं, और उनको यकीन है कि अब हम इसमें से नहीं निकल सकते, अब हमारा आखिरी वक्त आ गया। इस वक्त इनकी फितरत पे पड़े हुए पर्दे छटने लगते हैं। दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उस वक्त वो पुकारते हैं अल्लाह को इसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए। कहते कि आप इससे पहले अगर इन्वर्टेड कॉमा लगा लें, लाइन अंजैतना मिन हाजिही, ए अल्लाह अगर तू हमें इस मुसीबत से निजात दे दे या दे दी, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, हम तो बहुत शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। ऐसे वक्त में सब देवियां और सारे देवता गए, कोई याद भी नहीं आता। अबू जहल का बेटा था इकरमा, नाम सुना होगा आपने। फतेह मक्का के वक्त जब नबी सल्लम ने सबको लोकली यानी बिल्कुल पब्लिकली माफ़ी दे दी थी, ला तसरीब अलैकुमुल यौम कह के, लेकिन कुछ लोग थे जिनको आज की ज़ुबान में आप कह सकते हैं इश्तेहारी मुजरिम, जिनके बारे में आपने हुक्म दिया कि जिंदा या मुर्दा इनको पकड़ो, जहाँ इनको देखो इनको मार दो। उनमें से एक शख्स इकरमा भी थे, अबू जहल के बेटे थे। इस्लाम को बहुत तकलीफें दी इन्होंने, नबी के ख़िलाफ़ बहुत कुछ हुआ, तो नबी सल्लम ने इनका नाम भी उसमें रख दिया। अब हुआ क्या कि इन तक बात पहुंची कि मुझे तो पकड़ के मार देंगे, तो ये वहाँ से भागे, फरार हुए कि यहाँ तो इस मुल्क में तो मेरे ऊपर कहीं भी हाथ पड़ेगा मैं इस मुल्क से निकलता हूँ। मक्का से निकले, जद्दा के रास्ते हबशा जाने के लिए कश्ती पे सवार हो गए। बीच बीच में जब कश्ती आई, अचानक वहाँ तूफान आ गया। उस कश्ती में बाकी सारे लोग भी मुशरिक थे, ये भी थे, लेकिन अरबों की एक आदत थी कि खुशकी में जब रहते, जैसे आजकल आम तौर पे हमारी ज़िंदगी डे टू डे लाइफ में, तो वो अपनी देवी देवताओं को पुकारते थे, लात मनात उज़ा, उनसे बेटे बेटियां से है ताफियत मांगते। लेकिन जब किसी समंदर की मुश्किल में फंस चुके होते, तो उस वक़्त उनका गुमान क्या था कि हमारी देवियाँ और देवता समंदर में नहीं आ सकते, तो वहाँ वो अल्लाह को पुकारते थे। यही हुआ कि उन लोगों ने अपनी आदत के मुताबिक वहाँ अल्लाह को पुकारा, मुखलिसीन लहुद्दीन, ए अल्लाह या अल्लाह ये कर दे। जब उन्होंने ये पुकारा तो ये पुकार कोई पहली दफा थोड़ी सुनी थी इकरमा ने, लेकिन देखिए उनके ऊपर इल्जाम था ना कि इनको मारना है, तो दुख था। और जब भी आप किसी मुश्किल में पड़ते हैं ना, ये डाल दिए जाते हैं, सब सेहतमंद है आप बीमार हैं, ये भी आपके शौहर को बेदार करने को बहुत है। सब भाई बहन खूब खाते पीते हैं, आपके पास खाना पीना कम है, आपके से रिस्क कम है। ऐसे जो मुश्किल वक्त होते हैं ना कि सबको खुशियां नेमते मिल रही हैं और आप भुसक रहे हैं, रो रहे हैं, इस वक्त शऊर पे पड़े हुए पर्दे खुल जाते हैं। चूंकि इकरमा जो थे इस वक्त एक मुश्किल से गुजर रहे थे ना, जब इन्होंने लोगों को ये कहते सुना कि ओ अल्लाह हमारी मदद कर, या हमारे लात मनात उज़ ये हमारे बुत नहीं आ सकते, कहने लगे यही तो वो पैगाम है जो अल्लाह का बंदा दे रहा है इतने सालों से हमें। अगर ये देवी देवतियां इस पानी में नहीं आ सकती तो मान लो कि वो खुश्की पे भी नहीं आ सकती। उस वक्त इन्होंने चुपके चुपके अपने रब से बात की कि अल्लाह अगर इससे तूने आज निकाल दिया तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, पीछे जाऊंगा। अल्लाह को हुक्म देखिए कि मुशरिकों की भी अल्लाह दुआ सुन लेता है। ये मुशरिक उस वक्त में चूंकि अल्लाह को खालिस करके अपने आप को पुकारते थे ना, अल्लाह इनके तूफानों को रोक देता था। तूफान रुका, इकरमा वापस गए, अपनी बीवी के जरिए ये नबी सल्लम तक पहुंचे। बड़ा खूबसूरत वाक्य है इनके इस्लाम का, आप हयात साहबा की बुक जो है उसमें से सुनना चाहें या पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। और उस वक्त फिर जाकर ये अल्लाह के नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, इस्लाम कबूल किया, सहाबियत के शर्फ से फैजयाब हुए, और बाद में आने वाले दौर में ये इस्लाम के जबरदस्त मुजाहिद साबित हुए। अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में जब ज़कात देने से लोगों ने इनकार कर दिया, कुछ लोग मुर्तद हो गए, तो उनके खिलाफ जिहाद में इकरमा के कारनामे काबिले जिक्र है। यहाँ उसका तस्करा है कि इंसान के अंदर अल्लाह की मार्फत है। बाज दफा आप देखिए कि बातिल ख्यालात और नजरियात होते हैं ना, वो आ जाते हैं ऊपर, लेकिन पहले दौर में आपने देखा है कि कलई करते थे बर्तनों पे, कली होती थी शुरू में, वो बिल्कुल चमक जाता है पीतल का या सिल्वर का, लेकिन जब थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए या ठोकर लगी जाए तो ऊपर से कलई उतरती है ना। उर्दू में भी एक मुहावरा फलां की कलई खुल गई। बिल्कुल याद रखिए कि इंसान के ऊपर ये माहौल का एक वक्ती असर होता है, इसकी कलई खुल जाती है मुश्किल में। आज घर में एक सिस्टर थी हेल्प के लिए आई हुई, नाम आपको पता है, यहाँ भी मैंने उनको कई दफ़ा देखा है। तो मैं रोटी बना रही थी तो कहने लगी दीदी क्या क्या बना रही हैं, तो मैंने उनको बताया, कहती अच्छा मैंने तो नहीं कभी खाई। मैंने कहा खाओगी, कहती हाँ मैं खाऊंगी ना। मैंने कहा अच्छा पहली रोटी तुम्हारे लिए ना, तो मेरे लिए और इससे खुशी का मौका क्या था। मैंने उससे बातें शुरू कर दी, मैंने कहा मैं तुम्हें कई सालों से अपने घरों में देख रही हूँ, मैं तो अब आई हूँ लेकिन मैं आप लोगों के घरों में इनको कई सालों से जानती हूँ। फिर मैंने उससे बात की ना कि फारिग थी ना तो अकेली थी, तो मेरे साथ अंदर की बातें कर रही थी और मुझे इतनी करीब लगी वो इस्लाम के, थोड़ी सी अगर हम कोशिश करके देख लेना तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा देखो तुम आती हो हमारे घरों में और अगर हम तुम्हें ये बात नहीं बताएंगे ना तो कल क़यामत के दिन तुमने हमारा दामन थाम लेना है। मैंने कहा चलो मेरे साथ क्लास में, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, चलो तुम ना आओ, तुम आओ इधर पढ़ो सीखो, हम तुम्हें इसके भी पैसे देंगे। कितनी बड़ी बात है, ये लोग इतने सालों से हमारे घरों में आते हैं। मैंने कहा देखो तुम हमारी कितनी खिदमत करती हो, तो क्या हम तुम्हारी खिदमत ना करें। और मैंने इस नियत से उसको वो चीज़ दी कि अल्लाह इसका एक एक लुकमा इसके पेट में जाए और इसको हिदायत और दीन की मोहब्बत दे। और क्या बड़ी बात है कि ये लोग दीन पे आ जाएं, ये तो मुश्किलों में ठोकरें खाए हुए अपने मुल्कों से आए हुए हैं। आप देखते हैं सारा सारा दिन ये औरतें 5-5 पाउंड के लिए काम करती हैं ना, जो आप कहेंगे इन्होंने करना है। तो क्या मैं इतनी खुदगर्ज़ हूँ कि वो मेरा घर साफ करे तो मैं उसका दिल भी ना साफ करने की कोशिश करूं। अब आप कहेंगे कोशिश तो करते हैं, वो नहीं होते, नो प्रॉब्लम। पिछले सबक में भी आपने ये सुन लिया, एक बंदा भी हमारी कोशिश से इस्लाम पे ना आए ना अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा, लेकिन हमने कोशिश ना की तो जरूर पूछेगा। कुरान बदलना नहीं है, पैगाम बदलना नहीं है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून, लेकिन असल बात यह कि बात सीधी बयान कर दें। सिर्फ हमारा फ़र्ज़ क्या है कि हम अपने कॉल और अपने अमल से उनको बताएं। तो आज की डोज मैंने थोड़ी सी हल्की सी रखी, मैंने कहा फिर जिससे नज़र आएगी फिर इसके साथ बात करूंगी, लेकिन यह कि कोशिशें किया करें, प्यार से रो पड़े। यकीन करें कि मैं ऐसे उसे बात कर रही थी कि वो मेरी आंखों में पानी देख रही थी। मैंने कहा मुझे आपसे इतनी मोहब्बत हो रही है, और अल्लाह ताला आपको जरूर बदले। कहती बाजी मैं आती हूँ स्कूल में भी, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा आपको हमारे अंदर कोई अच्छी बात नहीं लगती? कहती बाजी मुझे तो आप लोगों की सारी बातें अच्छी लगती हैं। तो फिर जब मैंने हमारे को इस्लाम में बदला तो फिर थोड़ी सी उसको समझ आई कि वो मैं अपने अखलाक की बात नहीं कर रही बल्कि अपने इस्लाम की बात कर रही हूँ। तो इकरमा की दिल की दुनिया बदली, कब बदली? आखिरी लम्हे पे जाके। तो क्या बड़ी बात है कि ये लोग भी दुनिया में हमारे हाथों से किसी बात को ले लें, ना कोई माने लेकिन चलें तो सही। कोशिशें, मोहब्बत, प्यार, इस नीयत से इनके साथ बात किया करें कि अल्लाह इनकी फितरत को दे। कभी आपसे पैसे मांगते होंगे, ज़रा गरीब गुरब है, दे, फिर बैठ के बात करें, देखो ऐसे है वैसे है। और आपको पता है कि मुसलमान जब देने वाला बनता है ना और नॉन मुस्लिम लेने वाला, ये आइडियल सिचुएशन है तबलीग और दावत की। मैं खाना पका रही थी ना, तो वो सूरह यूसुफ, अब आप तो पढ़ेंगे, आपने नहीं अभी पढ़ी, तो उसमें भी उन्होंने एक ख्वाब पूछा था हज़रत यूसुफ से। तो हज़रत यूसुफ ने कहा अच्छा मैं ज़रा खाना आने के बाद तुम्हें इसकी ताबीर बताऊंगा, और उस खाने के दौरान ही उन्होंने उनको मैसेज दिया। तो मुझे वो याद आ रहा था कि पेट किसी का भर जाता है ना, पहले आप दूसरों की दुनिया की ज़रूरतें पूरी करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी फिर दूसरी ज़रूरतें भी पूरी करवा देता है। तो बहरहाल इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बात कह दी और वो हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है?